तो दो चीजें हम यूज करते हैं, देखो, एक तो प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं और एक मोह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो संसार में मोह को ही प्रेम कहा जाता है। मान लिया मुझको अपनी देह के प्रति प्रेम है, मैं अपने देह को बड़ा लाइक करता हूँ, बड़ी केयर करता हूँ और इसको सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझको, मेरे लिए सबसे प्रिय चीज़ जो है मेरी देह है। लेकिन यदि आप अध्यात्म विद्या पढ़ेंगे तो वहाँ वो कहते हैं ये गहरा मोह है। मोह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं देह हूं ही नहीं, मैं जीव हूं जिसके अंदर चेतनता है, जो जानता है और जिस पर सुख और दुख का असर पड़ता है, या यूं कहिए कि जो सुख और दुख भोगता है, वही तो मैं हूं। लेकिन पूरी संसार की विद्या सीखने के बाद भी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया जाता, ये नहीं बताया जाता कि तू देह नहीं है, देह जड़ वस्तु है, तू देह में निवास करता है, देह तुझको मिली है और ये नष्ट भी हो जाती है, तू नष्ट नहीं होता, ये बात कहीं नहीं पढ़ाई जाती। तो इसीलिए जब से हमारा संसार में आगमन हुआ है और जब तक हम संसार में रहते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से देह समझकर ही जीते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि देह से प्रिय वस्तु मेरे लिए कोई भी नहीं है। लेकिन अध्यात्म में बताया जाता है कि देह से ज्यादा दुख देने वाली वस्तु कोई नहीं है, क्योंकि सारे दुख जीव को, सारी बेचैनी देह के कारण ही मिलती है। क्योंकि देह से कर्म करते हो, आपकी इच्छा के अनुकूल होते हैं कि इच्छा के अनुकूल नहीं होते हैं। देह से भोग करते हो, इच्छा के अनुसार मिलते हैं, इच्छा के अनुसार नहीं मिलते हैं। तो देह वास्तव में जीव के लिए बंधन का कारण है और इस स्थूल देह के साथ साथ एक सूक्ष्म देह भी आपकी है जिसको मन कहते हैं। इस देह से ज्यादा तो मैं मन से प्रेम करता हूं, सत्य मेरे बारे में ये है, लेकिन इसके बारे में मेरा चिंतन कोई भी नहीं। मुझे कभी होश ही नहीं आता कि मैं मन के लिए जीता हूं। जब भी बात करूंगा तो मैं तो देह के लिए जीता हूं, देह ही मेरे लिए सब कुछ है। फैक्ट ये है कि हर जीव मन के लिए जीता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए आप, किसी लड़के का किसी लड़की से प्रेम हो जाता है और वो प्रेम इतना गहरा हो जाता है उसका कि वो कहता है कि मैं तो इसी से शादी करूंगा, लेकिन समाज उसके लिए तैयार नहीं होता या घर वाले तैयार नहीं होते, वो कहते हैं कि ये शादी तो हो नहीं सकती। तो ये प्रेम जिसको वास्तव में मोह कहते हैं, जितना ज्यादा गहरा होगा, जितनी आपकी मन की जो डिजायर है उसको पाने की जितनी तीव्र होगी, उतना ही आप बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाओगे। तो जब वो देखता है कि मेरी डिजायर किसी हालत से पूरी नहीं होगी, तब वो सुसाइड कर लेता है। तो यहां सीखने की बात यह है कि वो मन के लिए जी रहा है या तन के लिए जी रहा है। इस प्रिय तन को वो खत्म कर रहा है, इसलिए खत्म कर रहा है कि मन की डिजायर पूरी नहीं हो रही इसकी। तो नंबर वन पे डिजायर हुई या नंबर वन पे शरीर हुआ? लेकिन जब अध्यात्म विद्या पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो इसका ठीक ठीक एनालिसिस हम करना सीख जाते हैं कि नहीं, वास्तव में बात ठीक है, हर मनुष्य संसार का डिजायर पूरी करने के लिए जीता है। नहीं तो जीने की खुशी कोई मिलेगी ही नहीं उसको। आपको मनचाही वस्तु खाने को मिल जाए कितनी खुशी होती है आपको। मनचाही वस्तु बात हो रही है ना, मन में जिस चीज की चाहना है वो चीज मिल जाएगी कितनी खुशी होगी, और उसके विरुद्ध कोई चीज मिल जाए तो कोई खुशी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है तकलीफ हो। आप जिस बच्चे को मिठाई पसंद है उसको नमकीन दे दिया है, कैसा मुंह बनाएगा वो? और जिसको नमकीन पसंद है उसको मिठाई दे दिया है, तब कैसा मुंह बनाएगा वो? तो वस्तु तो जड़ है, चाहे वो मीठी है चाहे वो नमकीन है, लेकिन वहां लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात है, मन की इच्छा की बात है। तो मन की इच्छा जिससे पूरी हो रही है वो तो जीव बड़ा खुश हो रहा है, मन की इच्छा जिससे नहीं हो रही है उसके लिए वो दुखी हो रहा है। तो सारा जीवन तो उसका इच्छा पे आधारित है, देह पे आधारित जीवन कहाँ है? तो सत्पुरुष कहते हैं देह तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन की तरह से है, जिसको आप अपनी डिजायर पूरी करने के लिए यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसको इस तरह से कभी भी नहीं सोचते हो। इसलिए गीता में कहा है कि भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, इस यंत्र रूपी शरीर में आरूढ़, अब देखिए गीता क्या कह रही, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को, मैं प्राणी हूं ना, जीव हूं ना मैं, उनको संसार में वो भरमाता है ईश्वर, वो भी अंतर्यामी। तो मेरी देह को तो ईश्वर मेरे प्रार्थ के अनुसार चला रहा है, लेकिन मैं परेशान क्यों हूं? मैं परेशान इसलिए हूं क्योंकि मैं मन की डिजायर के अनुसार जीना चाहता हूं। ईश्वर का विधान यह है, तेरे प्रार्थ के अनुसार तेरी देह संसार में चलेगी, उसका जन्म होगा, उसकी मृत्यु होगी, उसके दुख आएंगे, सुख आएंगे, और तेरा जीवन यह कह रहा है कि मेरी मन की डिजायर के हिसाब से देह और संसार चलना चाहिए। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो कंट्राडिक्शन है, ये जीव को सारी जिंदगी परेशान रखता है। इसका कोई इलाज संसार में आज तक हुआ ही नहीं ना है। तो इसीलिए जो भी जीव संसार में आता है, चाहे वो कितने अमीर घराने में हो, चाहे वो कितने गरीब घराने में हो, चाहे उसको कितने ही जो है बुद्धि दे दी जाए, सांसारिक बुद्धि पढ़ने की कमाने की, लेकिन वो असंतोष लेकर जिएगा और असंतोष लेकर संसार से विदा हो जाएगा। ये सबके साथ होता है, इसीलिए नानक दुखिया कुल संसार, ये फकीर करें। नहीं तो ये बात महाराज जी की वाणी में क्यों आती है? राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया जिस शोभा पाई करता। जिसने उस ईश्वर की शोभा को जाना, ईश्वर के महत्व को जाना, ईश्वर के विज्ञान को जाना, चैन केवल उसको मिलेगा। सत्पुरुषों का जीवन इस बात की गारंटी देता है और इस बात को दर्शाता है कि ऋषियों के जीवन में कष्ट कम नहीं आया, बल्कि गृहस्थियों से कई गुने ज्यादा कष्ट आए उनको। गुफा में रहते हैं, ऋषियों को युद्ध भी करने पड़े, कृष्ण को कितने युद्ध करने पड़े, राम को कितने युद्ध करने पड़े, मोहम्मद साहब को कितने युद्ध करने पड़े, आप पास्ट देखो, ऋषियों को युद्ध भी करने पड़े, ऋषियों को कैंसर भी हुए, महर्षि रमण के 3 ऑपरेशन हुए, उनकी बांह में कैंसर था, लेकिन बिना एनेस्थीसिया के करा लिया उन्होंने 3 ऑपरेशन। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया, क्या हालत थी, आखिर में यह हालत थी कि एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते थे। तो विवेकानंद जो उस समय, तो नाम उनका नरेंद्र था, जब उन्होंने गुरु की हालत देखी तब उनके मन में आया ये कैसे ईश्वर है जो इतने लाचार हैं कि एक गिलास पानी नहीं पी सकते। वो तो ये सोच रहा था ये बड़े दुखी हैं। उसको डाउट हो गया, देह देखकर गुरु की उसको डाउट हो गया, गुरु के स्वरूप को भूल गया वो उस समय मोहमय आके। अब गुरु खुद कह रहा है उसे कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस शरीर में राम कृष्ण है। तो हमारे लिए तो राम कृष्ण देह का नाम है, लेकिन गुरु अपने आप को बता रहा है कि मैं कौन हूं। वो कहता है मैं ईश्वर हूं, मेरा देह से संबंध कोई नहीं, तो देह कितनी लाचार है, लेकिन गुरु का मोह देह से नहीं है। जिसको हम प्रेम कहते हैं गुरु के लिए, वो मोह है। उसने जीते जी अपने मोह को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है, अपने स्वरूप को पहचान लिया है। इसलिए देह कैसी भी है उसकी, कितनी भी कष्ट में है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो विवेकान जो शिष्य है वो तो बेचैन है गुरु की हालत देखकर, लेकिन जिसको कैंसर है गले का, जिसको एक गिलास पानी भी नहीं पी मिल रहा है, वो चैन में है, उसको कोई बेचैनी नहीं। तो इसीलिए जब तक आप किसी पूर्ण गुरु पर, पूर्ण ऋषि पर आपका भरोसा ना हो, उसके जीवन को आप शास्त्रों के अनुसार ना देखो, समझी, या अध्यात्म ज्ञान के अनुसार ना देखो, तो आपको जीवन भर इसका वहम नहीं मिटेगा कि प्रेम और मोह में अंतर क्या है। मोह सारी बेचैनी की जड़ है मनुष्य के लिए, और प्रेम शांति की जड़ है। मोह अशांति की जड़ है, तो प्रेम शांति की जड़। तो इसीलिए प्रेम का शब्द का इस्तेमाल ईश्वर के लिए किया जाता है, और मोह का इस्तेमाल देह के लिए किया जाता है। तो हमको परिवार से, संसार की वस्तुओं से, अपनी देह से मोह होता है। स्टार्ट हमारे शरीर से होता है वो, और ये आगे फैलता चलाता है, परिवार में फैलता है, फिर संसार में फैलता है, ये बढ़ता चलाता है। तो ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। इसलिए रामायण ने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मनुष्य के अंदर जितने भी मानसिक रोग हैं जिसके कारण ये बेचैन रहता है, जिसको कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका फैलाव है सांसारिक जीवन। क्योंकि ये विकार हैं, इसलिए जितना तेरा संसार में ये मोह बढ़ेगा, जिसको हम प्रेम करके कह रहे हैं, तेरी मानसिक बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो मोह है, नहीं, मैं हूं कुछ और, समझ रहा हूं कुछ और, तो ये सारी व्याधियों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जहां से फिर उपजई बहु शूला, जिससे फिर इस मोह के कारण अनेक शूल, अनेक कांटे पैदा हो जाते हैं, अनेक दुख पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए जब जिस दिन भी हमको ये अध्यात्मिकता समझ में आती है और पूर्ण गुरु का आसरा मिलता है, उसके जीवन को पढ़ते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, उसके शास्त्रों को विचार करते हैं, तब ये सारे भेद एक एक करके खुलते रहते हैं हमारे, और हमारी जो अज्ञानता है और उसके अनुसार जो हम वाक्यविलेरी शब्दावली प्रयोग करते हैं, तब पता लगता है कि जो ठीक शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, और ये जो हम जो यूज़ करते हैं वो कितना गलत यूज़ करते हैं उसको। तो प्रेम की वस्तु यदि कोई है तो वो केवल ईश्वर है। जीव को ईश्वर का प्रेम ही बचा सकता है संसार के दुखों से। जीव को ईश्वर का प्रेम ही बचा सकता है मौत से। जब मौत से बचाएगा तो जन्म से भी बचा देगा, क्योंकि जन्म कितना दुख का कारण होता है ये माँ भी जानती है। एक बच्चे को जन्म देने में कितना दुख सहती है वो भी जानती है, और बच्चा जब संसार में आके कितना क्लेश सहता है, बचपन में किस अज्ञानता में बेचारा हर चीज़ में मजबूर है, वो पता ही कुछ नहीं उसको। और जब बचपन आता है, जब खेल की उम्र आती है, तो देखो दुनिया वाले खेल ही छीन लेते हैं उसका, स्कूल में डाल देते हैं उसको। 25 साल तक वो बोझी ढोता रहता है किताबों का, वो चैन के दिन है उसके। उसके बाद फिर जॉब चाहिए, शादी चाहिए, उसका बोझ ढोता है। फिर उसके अपने बच्चे आते हैं, उनका बोझ ढोता है। फिर बुढ़ापे का बोझ ढोता है। फिर कौन से चैन के दिन थे उसके। तो बीच बीच में जो इंद्रियों के स्वाद मिल जाते हैं उसको, उस खुशी के वहम में वो लंबा दुख भोगता, लंबी बेचैनी भोगता। लेकिन जीने का रास्ता उसको पता ही कुछ दूसरा है ही नहीं, कर जिए तो जिए कैसे, इसलिए वो इसी में जीता। किसी को परिवार बढ़ाने में खुशी मिलती है, किसी को पैसा बढ़ाने में खुशी मिलती है, किसी को मकान बड़ा बनाने में खुशी मिलती है, किसी को बहुत घूमने फिरने में खुशी मिलती है। सबके आइटम अलग अलग हैं खुशी के। बेचैनी के भी आइटम अलग अलग हैं सब, कोई किसी कारण से बेचैन है, कोई किसी कारण से बेचैन। तो इसीलिए ये जो अपनी देह के प्रति मोह है, जिसको हम प्रेम करके कह रहे हैं, या माता पिता पत्नी बच्चों से जो मोह है, जिसको उसको भी जिसको हम प्रेम करके कह रहे हैं, देश से मोह है उसको भी हम प्रेम करके कह रहे हैं, यदि ये देश प्रेम होता वास्तव में, तो महाराज जी समता विलास में क्यों लिखते कि देश भक्ति भी देह परायणता है। ये वर्ड इस्तेमाल समता विलास में महाराज जी क्यों करते, देश भक्ति भी देह परायणता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका स्वार्थ ही आपको मजबूर कर रहा है देशभक्ति करने के लिए। निष्काम देशभक्ति नहीं है वो कि मेरा देश है। एक वक्त सोने की चिड़िया था, मैं इसको फिर कोशिश करके सोने की चिड़िया बनाऊंगा, तो सोने की चिड़िया क्या देगी आपको, भोग विलास ही तो देगी। सोने की चिड़िया बन गया देश, तो आपको क्या मिलेगा, तो सुखी तो मिलेंगे इंद्रियों के, उसके अलावा कुछ मिलेगा। और महाजी कहते हैं कि इंद्रियों के सुख जहर समान है, इसको भोगवाद कहते हैं, इसको अध्यात्म में रजोगुण कहते हैं। और गीता साफ कह रही है कि रजसा तो फलम दुखम, रजोगुण का परिणाम दुख है। इसका मतलब जितने भोग मेरे ज्यादा बढ़ेंगे मेरा मानसिक क्लेश बढ़ जाएगा, इसका मुझे विज्ञान पता नहीं है। इसलिए संसारियों की नकल करके मैं पहले तो शरीरों से प्रेम करता हूँ, फिर वस्तुओं से प्रेम करता हूँ, अर्थात शरीर के मोह में फंसता हूँ पहले, फिर वस्तुओं के मोह में फंस जाता हूँ। है वो जहर, तो आप जहर किसके लिए है, मन के लिए जहर है। क्यों, क्योंकि मन के अंदर जो डिजायर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जितना भोग बढ़ेगा मन की डिजायर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। भाई आप फैशन करो तो पहले तो 4 तरह के कपड़ों की जरूरत होती थी आपको, जब फैशन करा तो आपको 40 तरह के कपड़ों की जरूरत है, तो 40 तरह के कपड़ों के बनाने के बारे में, खरीदने के बारे में, उसके संसाधन इकट्ठे करने के बारे में, टेलर ढूंढने के बारे में, सिलेक्शन करने के बारे में, ये सारा प्रोसेस अपनाओगे फैशन करने के लिए, तो कितनी मन की बेचैनी होगी, मन को कितना सोचना पड़ेगा, कितनी तरह के डिजायर्स उसमें पैदा होंगे, जरा विचार करके देखो। तो जिसके अंदर फैशन वाला भाव नहीं है, साफ सुथरा रहना चाहता है बस, जैसी समाज की मर्यादा है बस फिनिश हो गया, तो उसके अंदर कितनी कम बेचैनी होगी कपड़े के मैटर में, और फैशन परस्ती करने वाले के अंदर कितनी बेचैनी होगी आप कल्पना कर सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं। तो दिल आपका यही कहेगा जिसको जितना ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा बेचैन है, लेकिन हम नकल दूसरी करते हैं, जिस पे जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा खुशी है सुखी है, हम कल्पना उसके बारे में ये करते हैं फिर उसकी नकल करते हैं। तो ये मोह नहीं हुआ, वास्तविकता कुछ और है, समझ रहे हैं हम कुछ और, ये मोह नहीं हुआ, अज्ञानता नहीं हुई। तो इसीलिए जो चीज जैसी हम वैसे नहीं समझते। अब महाराज जी की समता विलास देखो, ये रहस्य खोल रही है, वो कहते हैं ये संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है। अब वर्ड्स नोट करिए जरा, यह संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है परंतु अंदर से विष रूप है। अब जो इस संसार को ज्यादा भोगने की तैयारी करेगा, ज्यादा फैलाव करेगा, उसके मन के अंदर विष आएगा नहीं आएगा, विष यही इच्छाओं का विषय है, इच्छाओं की वैरायटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कभी जिंदगी में चैन नहीं मिलेगा, भागता ही रहेगा सारी जिंदगी वो, अब मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, वो लक्ष्य बनाता रहेगा, उसके मौत बीच में आ जाएगी। बड़े बड़े लोग देखे 40 साल की एज में डेथ हो गई, बड़े ख्वाब देखे थे, बड़े उन्होंने एफर्ट्स किए थे, अब बेचारी घरवाली अकेली रह गई। होश ही नहीं, जो जिंदगी है असली चीज उसकी फिक्र ही कुछ नहीं, इसी का नाम मैटेरियलिज्म है, यही जड़वाद है वास्तव में, लिखा यही नास्तिकता है, इसको नास्तिकता कहते हैं। जो ईश्वर के मानने वाले लोग संसार के भोगों में मस्त रहते ना, वो नास्तिक लोग हैं, ईश्वरवादी नहीं है वो। कोई समझता मैं पूजा पाठ करता हूं तो मैं तो ईश्वर को मानने वाला हूं, जिसका विश्वास भोगवाद पर है, जिसका विश्वास मादावाद पर है, जिसको मेटेरियलिज्म कहते हैं, समझे। तो ये कंज्यूमर कल्चर और मेटेरियलिज्म ये मनुष्य के लिए जहर है, क्योंकि उसकी बुद्धि इतने गहरे अज्ञान में चली जाती है, अपने भी गहरे हो जाते हैं स्वार्थ के कारण। बच्चे माता पिता को यूज करते हैं, माता पिता बच्चों को यूज करते हैं, पति पत्नी को यूज करता है, पत्नी पति को यूज करती है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी डिजायर पूरी करने के लिए। तो अब बताइए ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा प्रेम है? इसीलिए शास्त्र यदि नहीं पढ़ोगे या पढ़ भी लिए सोचोगे नहीं गहराई से, रामायण बहुत लोग पढ़ते हैं, बड़ा अखंड पाठ होते हैं, मैंने कभी सुना नहीं किसी ने इस बात पर ध्यान दिया हो, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तासे फिर उपजई बहुशूला। सारा संसार मोह में ग्रस्त है और अखंड रामायण का पाठ कर रहा है, तो रामायण का पाठ तो तब सफल होता ना जब इस एक शब्द को तो रामायण से सीख लेता। तो कह कह रहे हैं तुलसीदास जी, तो ये अखंड रामायण का पाठ, ये नास्तिकता नहीं तो क्या है? जिस ऋषि ने रामायण लिखी उसकी बातें नहीं सीखना, इसका मतलब नास्तिकता नहीं है ये? लोक दिखावे के लिए हो गया, देखो मैं बड़ा भक्त हूँ, बड़ा देखो रामायण का पाठ करता हूँ, राम को मानने वाला हूँ, राम के गीत गाता हूँ। बुद्धि तो तेरी गहरे अज्ञान में स्थित है, तो ऐसे पूजा पाठ का क्या लाभ हुआ तुझको? तो इसीलिए ऋषियों ने जिन बातों को लिखने के पहले पूरा जीवन लगा दिया उस ज्ञान पर, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने पर, उतारने के लिए, फिर अपने अनुभव के बाद उन्होंने उस ज्ञान को लिखा है ताकि लोग जो संसार में दुखी हैं, जो गहरे मोह में फंसे हुए हैं, जिनको होश ही नहीं है, ईश्वर प्रेम की जरूरत ही नहीं समझते, जानते ही नहीं कि ईश्वर प्रेम क्या होता है, जानते ही नहीं कि सही ईश्वर पूजा क्या होती है, तो बताइए उस जब ज्ञान पर विचार ही नहीं करेंगे, उसका पाठ करते रहेंगे, तो वक्त की बर्बादी नहीं तो क्या है वो? तो इसलिए ये बड़ा गहरा मसला है, साधारण मसला नहीं है। संसार में हर जीव मोह में ग्रस्त है और कह रहा है कि मैं जीवों का प्रेमी हूं। इसलिए महाराज ने स्पष्ट किया, सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार। जो जीवों से प्रेम हो का मत स्वरूप यह है कि उनकी सेवा करो, उनके दुखों को दूर करो। प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम तो ईश्वर से होगा, और इसलिए सेवा भी ईश्वर का प्रेम हासिल करने के लिए की जाती है। उस सेवा का नाम है निष्काम सेवा, अर्थात ईश्वर ने मुझको कुछ गुण दिए हैं, कुछ संपत्ति दी है, कुछ साधन दिए हैं, भोग विलास के लिए नहीं, आवश्यकता पूर्ति के लिए। वो आवश्यकता पूर्ति करूं, उसके बाद उन संसाधनों का लोगों का दुख दूर करने के लिए निष्काम भाव से उपयोग करूं। निष्काम का मतलब यह हुआ कि मैं सेवा करके उससे कोई रिटर्न नहीं चाहता, मुझको ईश्वर प्रेम चाहिए, सेवा करके मुझे ईश्वर की याद आनी चाहिए, तो इसीलिए वो सेवा करता है इस भाव से कि प्रभु आपने ये कला मुझको दी है और ये दुखी जीव मेरे सामने भेजा है, तो इस कला से के द्वारा आप ही इसकी सेवा करने वाले हो, आप ही इसका दुख दूर करने वाले हो, क्योंकि बिना प्रारब्ध के तो ना किसी का कुछ को सुख मिल सकता है, ना किसी को दुख मिल सकता, तो मैं कौन हूं इसकी सेवा करने वाला? इसका प्रारब्ध ही है जो इस समय ये मेरे सामने उपस्थित है, और आपने मुझको वो साधन दिए हैं जिससे इसकी सेवा हो सकती है, इसका दूर दूर हो सकता है, तो इसलिए करने वाले आप हुए। तो उसके अंदर ये भाव रहता है, उसने सेवा की और भूल गया, वो तुरंत भूल जाता है कि याद नहीं करता कि मैंने उसकी सेवा की थी, की ही नहीं मैंने उसकी, उसको तो करते समय भी हो जाए कि ईश्वर ने इन हाथों से सेवा करवाई है, अंदर बैठ हुआ ईश्वर, और सेवा इसके प्रार्थ के अनुसार हुई, उसकी व्यवस्था ईश्वर ने की है, तो मैं करने वाला कहां से हो गया? तो इस विवेक के साथ जब वो सेवा करता है तो उसकी निष्काम सेवा होती है, और जब निष्काम सेवा करी उसने तो ये ईश्वर की याद आई नहीं आई उसको कि करवाने वाला ईश्वर है। तो इसीलिए सेवा करके उसका प्रेम ईश्वर से होगा। तो जब इसलिए वो वाणी जो है ये भेद खोल रही है कि सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार, चाहे मेरे माता पिता हैं, चाहे मेरी पत्नी है, चाहे मेरे बच्चे हैं या समाज के लोग हैं, मैं तन मन से, तन मन धन जो कुछ भगवान दिया है, मन के अंदर यदि ज्ञान दिया है, क्वालिटीज दी हैं, तो ज्ञान से भी सेवा करता हूँ, विचार से सेवा करता हूँ, शरीर के द्वारा जो बन सकता है शरीर से सेवा करता हूँ, धन है, संपत्ति है, वस्तु हैं, उनके द्वारा उनकी सेवा करता हूँ। तो सेवा हुई उनकी, प्रेम नहीं हुआ, वो प्रेम तो ईश्वर से होगा। तो कर्तव्य इसी को कहते हैं कर्तव्य भावना से जगत की सेवा करना। तो जब तू सेवा करता है उनकी प्रेम के साथ, प्रेम के साथ क्या मतलब हुआ कि ईश्वर भाव के साथ, कि ईश्वर इनके अंदर विराजमान है, वो देख रहे हैं, करने वाले वही हैं, साधन देने वाले वही हैं, तो तेरे अंदर करुणा पैदा होती है दूसरे का दुख देखकर। तो उस करुणा के वशीभूत होकर तो उनकी निष्काम भाव से सेवा करता है, इसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम का मतलब वो नहीं है जो ईश्वर प्रेम होता है, यहां प्रेम का मतलब दूसरा है। शब्द प्रेम का यूज किया जा रहा है क्योंकि जो हम आमतौर पर शब्द यूज करते हैं वो शब्द वाणी में भी आते हैं, लेकिन उसका अर्थ तो समझना पड़ता है। तो इसलिए ईश्वर को कहा जाता है प्रेम रूप है, कहीं किसी मनुष्य के बारे में कहा जाता है ईश्वर ये मनुष्य प्रेम रूप है, ये तो नहीं कहा जाता। ईश्वर को कहा जाता है आनंद रूप है, वो आनंद का सागर है, मनुष्य को कहा जाता है ये आनंद रूप है। ईश्वर को कहा जाता है ईश्वर शांति का सागर है, किसी मनुष्य को कहा जाता है ये शांति का सागर है, तो बताइए मुझे ये शब्दावली ईश्वर के लिए यूज हो रही ना। तो जो नाशवान चीज है उसके लिए शब्द प्रेम का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गलत यूज है उसका। देखिए सामाजिक जो चलन होता है वो भाषा यूज करते हैं, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन जब हमने समझना है ठीक चीज, संतों की वाणी समझना है, शास्त्रों का मर्म समझना है, तो हमें वही शब्द सीखना पड़ेगा जहां जिस शब्द का प्रयोग शास्त्र कर रहे हैं, जिस वास्ते कर रहे हैं। तो प्रेम ये ईश्वर की चीज है, ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रेम ईश्वर से किया जाता है, और संसार में जो है वो या तो करुणा है, दया है, समझ नहीं, जिसके वशीभूत होकर जीव सेवा करता है, समझ नहीं, और यदि वो समझ रहा है ये प्रेमी है, प्रेम करते हैं, तो इस ये वास्तव में इसके लिए मोह शब्द का इस्तेमाल शास्त्रों में किया गया है, हम मोह में फंसे हुए हैं और प्रेम कह रहे हैं उसको। तो इसीलिए बड़ा ही जागरूक होकर संसार में चलना पड़ता है, शास्त्रों का मर्म समझ के संसार में चलना पड़ता है, तब जाकर सही रूप में हमारी ईश्वर की भक्ति हो पाती है। जो प्रेम रूप ईश्वर हमारे रोम रोम में विद्यमान है, उसका सिमरन करके जब अंदर वो अनुभव होता है, तब कैसा प्रेम उमड़ता है ये भक्तों के जीवन को देखो। मीरा कैसी दीवानी थी प्रेम में, वो प्रेम की, वो थी प्रेम की दीवानी, हम तो मोह में दीवाने हो रहे हैं, वो प्रेम दीवानी थी। तो इसीलिए ये प्रेम और मोह ये दो शब्द जो हैं बड़े काम के शब्द हैं, लेकिन हम दोनों का मिसयूज करते हैं, गलत यूज करते हैं। प्रेम केवल ईश्वर से होता है और मोह देहधारियों से होता है। सेवा करने को कोई किसी के मने नहीं करता, माता पिता की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लेकिन विचारवान बनकर, और विचारवान संसार में नहीं होते, विचारवान केवल सतबुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर जिनकी ईश्वर परायण बुद्धि है, जो उस विज्ञान को समझते हैं, उनको अध्यात्म में विचारवान कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है। कौन कितना पैसा कमाता है, कितनी उसने पीएचडी की डिग्री ली है, उसने और क्या संसाधन संसार में इकट्ठे किए हैं, उसको अध्यात्म बुद्धिमान नहीं कहते, उसको मोहग्रस्त कहते हैं। अज्ञानी कहते हैं उसको। तो इसलिए सही शब्दों का अर्थ सीखना है तो शास्त्र पढ़ना जरूरी है, बिना उसके मनुष्य की बुद्धि कभी भी जागृत नहीं हो सकती। पांच विकार में उसका जीवन खत्म हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और वो अहंकार वश यही सोचता रहता है कि मैंने बड़ी प्रगति की है, इसीलिए प्रगति करने के बाद भी मन में निराशा लेकर संसार से जाता है, जीवन उसका असफल हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम।